बस शुक्ला निवास के बाहर आकर रुकी। धीरे धीरे सब लोग बाहर निकले और शुक्ला निवास में बड़ी ही गर्मजोशी से सबका स्वागत किया गया। सब एक दूसरे से मिले। अर्पिता अपनी बाकी बहनों और पापा से मिलने के बाद दीदी जीजू पुकारती हुई खुशी से चहकती हुई जाकर राधिका और माधव के गले से लग गई। फिर अपने छोटे से गोल मटोल क्यूट से भांजे को अपनी गोद में लेकर पुचकारते हुए लाड प्यार करने लगी। अपनी छोटी मासी का लाडला था वो, उसके जैसा ही शैतान। अप्पू रोज वीडियो कॉल पर उससे बात करती थी, इसलिए वो बहुत अच्छे से जानता था उसे। अप्पू उसे प्यार करती तो वो भी किलकारियां मारते हुए अपनी खुशी जाहिर करता। अप्पू उसके चेहरे को चूमती तो उसकी मासूम खिलखिलाहट सबका मन मोह लेती। इतनी प्यारी मुस्कान थी कि अप्पू उस पर निहाल हुई जा रही थी। ये गलत बात है साली साहिबा, अपने भांजे को देखते ही आपने तो अपने जीजू और दीदी को पूरी तरह से नज़रअंदाजी कर दिया। राघव के सामने तो हमारी कोई अहमियत ही नहीं रही। माधव ने झूठी नाराजगी जताई, जिसे सुनकर अर्पिता ने निगाहें उसकी ओर घुमाई और क्यूट सी शक्ल बनाकर बोली, ऐसा नहीं है जीजू, आप और दीदी बहुत स्पेशल है मेरे लिए, पर आप दोनों से ज़्यादा प्यार मैं अपने स्वीटू से करती हूँ और उसे मैंने इन दो महीनों में इतना सारा मिस किया है कि अब मैं एक मिनट के लिए भी इसे खुद से दूर नहीं कर सकती। अर्पिता मुस्कुराते हुए वापस राघव के साथ बातें करने में मग्न हो गई, जिस पर कभी वो अपने आगे के दो दांत दिखाकर खिलखिलाता तो कभी किलकारियां मारता, कभी अपनी ही भाषा में कुछ कुछ बोलने लगता। माधव और राधिका के साथ साथ बाकी सब भी इस मासी भांजे की बॉन्डिंग देखकर मुस्कुराने लगे। शाम हो चुकी थी तो कुछ देर आराम करने के बाद पार्टी का आगाज हुआ। राघव की नन्ही सी हथेली थामकर अप्पू ने उसके साथ मिलकर केक काट दिया और जैसे ही उसे क्रीम चटाई, राघव ने सीधे केक पर छलांग लगा दी। केक का सत्यानाश हुआ था। नन्हे राघव की छोटी सी पूरी बांह केक से सनी थी। सारे बच्चे अपने केक का हाल देखकर मुंह बिचकाए रोने की तैयारी में थे। बाकी सब फटी आंखों से ये नज़ारा देख रहे थे। राधिका ने अपना सर पकड़ लिया था। माधव अपने बेटे के इस हरकत पर भी मुस्कुरा रहा था और अर्पिता राघव की खिलखिलाती हंसी वहां गूंज रही थी। खैर, निशांत दूसरा केक लाया, शायद जानता था कि ऐसा ही होगा। सबका मुंह मीठा करवाया गया। अप्पू ने राघव का हाथ धोकर उसके कपड़े बदले और खुद बैठकर उसे केक खिला रही थी। बच्चों के बीच उलझे निशांत की नज़र उन्हीं दोनों पर टिकी थी। लबों पर मुस्कान और आंखों में कुछ अलग सी चमक थी। राघव को केक खिलाते हुए अर्पिता को किसी की निगाहों के खुद पर ठहरने का एहसास हुआ तो राघव पर से ध्यान हटा। निगाहें निशांत की निगाहों से जा मिली। उसने आंखों से कुछ इशारा किया, जिस पर अर्पिता ने उसे आंखें दिखाई। उसने फिर हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट की। अब की बार अर्पिता ने गालों को नाराजगी से फुला लिया। निशांत ने फिर कोशिश की और अर्पिता ने खींचते हुए उस पर से निगाहें फेर ली। बाकी सब तो व्यस्त थे, पर पल्लवी की निगाहों से उनकी ये नजरों की बातें छुप ना सकी। उसने निशांत के कान में कुछ कहा तो उसने अपनी पलकें झपका दी और निशांत की ओर बढ़ गया। निशांत, जरा इधर तो आ, कुछ जरूरी बात करनी है तुझसे। निशांत, जिसका पूरा ध्यान सामने बैठी अप्पू पर था, निशांत की अचानक आई आवाज सुनकर हड़बड़ा गया। क्या बात करनी है भैया? अकेले में करनी है, जरा साइड तो आ। निशांत के चेहरे पर गंभीर भाव देखकर निशांत ने हामी भरी और उसके साथ चला गया। बोलिए भैया, क्या जरूरी बात करनी है आपको मुझसे? इस वक्त दोनों कमरे में थे। निशांत निशांत के पास चला आया और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए गंभीरता से कहना शुरू किया। देखो निशांत, मैं जानता हूं कि तुम्हें बच्चे बहुत पसंद है। तुम्हारी और अर्पिता की शादी को 3 साल होने वाले हैं, तो अब तुम भी अपनी फैमिली को आगे बढ़ाना चाहते हो। अपने बच्चे को देखने की ख्वाहिश है तुम्हारी, पर अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए अर्पिता पर किसी किस्म का कोई दबाव मत डालो। वो छोटी है तुमसे, इतनी जल्दी वो कभी शादी नहीं करती, क्योंकि शादी करना उसका सपना नहीं था। उसने शादी की तो तुम्हारे और अपनी दीदी के लिए, उसका सपना कुछ और है। और ये बात तुम भी जानते हो कि उसने अपने सपने को पूरा करने के लिए कितनी मेहनत की है। अभी उसका करियर बस शुरू ही हुआ है, शायद वो अभी अपना पूरा फोकस अपने काम पर करना चाहती होगी, इस जिम्मेदारी के लिए तैयार नहीं होगी। उसे समझने की कोशिश करो, थोड़ा वक्त दो। उसने कितना कुछ किया है तुम्हारे लिए, अपने पापा और दीदी, अपना घर, अपने दोस्त, यहाँ तक कि अपना शहर तक छोड़कर यहाँ आ गई, तुम्हारे परिवार को अपना लिया, तुमसे जुड़े रिश्तों को दिल से निभाने लगी, अपने सभी फर्ज तो अच्छे से निभाती है वो। तुम भी थोड़ा समझो उसे, अभी उस पर बच्चे के लिए दबाव बनाने की जगह उसके फैसले की रिस्पेक्ट करो और साथ दोस्त का आगे बढ़ने में, इससे तुम्हारा रिश्ता स्ट्रांग होगा। और अभी नहीं तो 1-2 साल बाद बच्चे तो होंगे ही, पर ये तुम दोनों का फैसला होना चाहिए, सिर्फ अकेले तुम्हारा नहीं, क्योंकि बच्चे के आने से अर्पिता की पूरी जिंदगी बदल जाएगी, उसकी जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, करियर से ब्रेक उसे लेना पड़ेगा, प्रेगनेंसी के दौरान होने वाली सारी प्रॉब्लम उसे फेस करनी होगी, जिसके लिए वो शायद अभी तैयार नहीं है। समझो इस बात को। निशांत बड़ा भाई था उसका और स्वभाव से ही शांत व समझदार। बहुत ही आराम से उसने निशांत को अर्पिता की स्थिति से रूबरू करवाते हुए समझाया था। निशांत जो बहुत ही ध्यान से उसकी बात सुन रहा था, शायद उसे अनजाने में हुई अपनी गलती का एहसास हो गया था। सॉरी भैया, अपनी चाहत के आगे मैंने अर्पिता के नजरिए को जानने की कोशिश ही नहीं की। माफी मांगने की बात नहीं है निशांत, तुम्हारी चाहत गलत नहीं है, बस अभी उसके लिए सही वक्त नहीं आया है। तो थोड़ा धैर्य से काम लो, सब्र रखो और अर्पिता को समझने की कोशिश करो। मैं अब उस पर प्रेशर नहीं बनाऊंगा, वही होगा जो वो चाहेगी। दृशांत ने मुस्कुराते हुए उसके कंधे को थपथपाया और उसे बाहर आने को कहकर वहां से चला गया। निशांत कुछ सोचते हुए उसके पीछे ही जाने लगा कि उसके फोन की बीप बजी। निशांत ने फोन निकालकर देखा तो अर्पिता का मैसेज था। रूम में आओ जल्दी, कुछ बात करनी है। अब इसे मुझसे क्या बात करनी है, सोचते हुए निशांत के माथे पर सिलवटें पड़ गईं। मन ही मन उसने कुछ सोचा और रूम से निकलकर सीढ़ियों की ओर बढ़ गया। रूम में आकर उसने देखा तो अर्पिता गेट की ओर पेट किए खड़ी थी। दरवाजा बंद कर दीजिए, अर्पिता की आवाज उसके कानों से टकराई तो निशांत ने पलटकर दरवाजा बंद कर दिया। अर्पिता अब उसकी ओर पलटी, पर वो कुछ कहती उससे पहले ही निशांत ने उसे रोक दिया। रुको, तुम कुछ भी कहो, उससे पहले मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। अर्पिता अब आंखें बड़ी बड़ी करके उसे देखने लगी और चेहरे पर सवालिया भाव उभर आए। निशांत के कदम अर्पिता के सामने आकर ठहरे। आई एम सॉरी अप्पू, मैंने तुम्हें समझने की कोशिश नहीं की, अपनी ख्वाहिश तुम पर थोपने लगा, तुम पर बच्चे के लिए दबाव बनाने लगा। एक बार भी ये नहीं सोचा कि बच्चा हमारा होगा तो फैसला भी हम दोनों का होना चाहिए। तुम्हारा नजरिया जानने की कोशिश नहीं की, जबकि इस फैसले का सबसे गहरा असर तुम पर ही पड़ेगा। पर अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, अब मैं तब तक इस बात का जिक्र भी नहीं करूंगा जब तक तुम इसके लिए तैयार नहीं होती। अभी तुम्हारे करियर की शुरुआत ही हुई है, अपने सपनों की ओर पहला कदम बढ़ाया है तुमने। तुम अपने करियर पर ध्यान दो, अपना सपना पूरा करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। बच्चे कुछ साल बाद भी हो जाएंगे तो चलेगा, पर जब भी हमारा बच्चा इस दुनिया में आएगा उसमें हम दोनों की मर्जी शामिल होगी। जाने कब से अर्पिता उससे यही सुनना चाहती थी। आज जब निशांत ये कह रहा था तो अर्पिता की आंखों में हल्की नमी उतर आई थी और लबों पर मीठी सी मुस्कान बिखरी थी। वो खामोशी से निशांत की बात सुनती रही। वो चुप हुआ तो अर्पिता ने अपनी चुप्पी तोड़ी। मैं प्रेग्नेंट हूँ, अर्पिता के इन शब्दों ने निशांत को हिलाकर रख दिया। वो बुरी तरह से चौंक गया और फटी आंखों से अचंभित सा उसे देखते हुए सवाल किया, क्या कहा तुमने? मैं प्रेग्नेंट हूँ निशांत, अर्पिता ने अपनी बात दोहराई, पर निशांत को अब भी उसकी बात पर विश्वास ना हुआ। वो फटी आंखों से हैरान परेशान सा उसे देखता रहा।
तुम कह रही हो कि तुम प्रेग्नेंट हो, मतलब तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुम मम्मी और मैं पापा बनने वाला हूँ, हमारा बच्चा इस दुनिया में आने वाला है। हाउ इज दिस पॉसिबल? बेचारा निशांत सदमे की स्थिति में अपने बाल नोचते हुए खुद में ही बड़बड़ाने लगा। अर्पिता खामोशी से उसे देखती रही, फिर रुंधे स्वर में सवाल किया, आप खुश नहीं हैं ये सुनकर? हैरान हूँ यार, ये कैसे हो सकता है? तुम प्रेग्नेंट हो, मैं बाप बनने वाला हूँ, तुम तो इसके लिए तैयार ही नहीं थी, फिर ये कैसे मुमकिन है? निशांत सच में बेहद हैरान था और उसका ऐसा रिएक्शन देखकर अर्पिता घबरा गई थी। हो गया अपने आप, मुझे पता ही नहीं चला, बोलते हुए अर्पिता की आंखें छलक आईं और उसके आंसू देखकर निशांत अपने सेंसेस में लौट आया। अर्पिता के चेहरे को उसने अपनी हथेलियों में भर लिया। हे अप्पू, तुम रोने क्यों लगी यार? देखो, अगर गलती से तुम प्रेग्नेंट हो गई हो और इस बच्चे की वजह से परेशान हो, इतनी बड़ी जिम्मेदारी के लिए अभी तैयार नहीं तो हम जाकर अबॉर्शन करवा देंगे तुम्हारा, रोना बंद करो प्लीज। अर्पिता के कानों में जैसे ही निशांत के बेचैनी भरे शब्द पड़े, उसकी भीगी पलकें उसकी ओर उठ गईं और आंखों में हैरानी लिए वो उसे तकने लगी। आप तो बच्चा चाहते हैं ना, फिर अबॉर्शन की बात इतनी आसानी से कैसे कह गए? क्योंकि तुम अभी बच्चा नहीं चाहती और मैं तुम पर ना तो अपनी मर्जी थोपना चाहता हूँ और ना ही एक अनचाही जिम्मेदारी तुम पर पड़ने देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जब भी हमारा बच्चा इस दुनिया में आए तो वो तुम्हारी मजबूरी नहीं इच्छा बनकर आए, मेरे साथ साथ तुम भी उस खुशी को खुलकर जियो। जब तक तुम बच्चे के लिए तैयार नहीं, हम नहीं करेंगे बच्चा। आप मेरा अबॉर्शन करवा देंगे? अर्पिता अब भी बेयकीनी से उसे देख रही थी। ये फैसला लेना आसान नहीं था निशांत के लिए, कितनी चाहत थी उसे बच्चे की और अब अपने ही बच्चे को खुद से दूर करना, उसका दर्द तड़प उठा था, पर दर्द उसने चेहरे पर नहीं आने दिया और बड़े ही प्यार से उसके आंसुओं को पूंछते हुए मुस्कुरा दिया। अगर इसी में तुम्हारी खुशी है तो हम कल ही डॉक्टर के पास चलेंगे, मैं बस तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ, मैं अबॉर्शन नहीं करवाना चाहती। आपको बच्चे की इतनी चाहत है, अब जब आपकी इच्छा पूरी होने वाली है तो फिर मैं कैसे इस बच्चे को मारकर आपसे आपकी खुशी छीन सकती हूँ? अर्पिता, मेरी ये इच्छा बाद में पूरी हो सकती है ना, अभी तो मैं जिम्मेदारी के लिए तैयार नहीं हूँ, तुम्हारी करियर की शुरुआत ही हुई है, ये सही वक्त नहीं है इसके लिए। निशांत बहुत ही प्यार से उसे समझा रहा था और अर्पिता एकटक उसे ही देखे जा रही थी। अपने बच्चे से जीने का हक छीनकर मैं कैसे खुश रह पाऊंगी, ये जानते हुए कि आपको बच्चे की कितनी चाहत है, आपसे आपका बच्चा छीनकर मुझे कैसे सुकून आएगा?
अपने करियर और सपने के लिए अगर मैंने भगवान की इस नेमत को ठुकरा दिया तो कितनी स्वार्थी माँ बन जाऊंगी मैं, जिसने अपने स्वार्थ के लिए अपने बच्चे को मार दिया। मैं दोबारा कभी आपसे नजरें नहीं मिला पाऊंगी। जब जब अपना काला कोट पहनूंगी तो मुझे एहसास होगा कि इसकी कीमत मैंने अपने बच्चे को मार कर चुकाई है। नहीं, मैं अबॉर्शन नहीं करवाऊंगी, कभी नहीं करवाऊंगी। अर्पिता बदहवास सी खत में ही बोले जा रही थी। निशांत परेशान निगाहों से उसे देखता रहा, फिर उसके चेहरे को अपने सामने करते हुए गंभीरता से सवाल किया, अर्पिता इधर देखो मेरी तरफ और बताओ मुझे कि तुम क्या चाहती हो। एक बच्चे की दुनिया में लाना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और इसका सबसे ज्यादा असर तुम पर होगा, तो अच्छे से सोचने समझने के बाद कोई भी फैसला लेना। और याद रहे कि सबसे पहले अपने बारे में सोचना है और ऐसा फैसला लेना है जिस पर आगे चलकर तुम्हें पछताना ना पड़े। अर्पिता की भीगी पलकें निशांत की ओर उठ गईं और वो उसकी आंखों में झांकने लगी। टू बी कंटिन्यूड।